लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है हंगरी और स्लोवाकिया में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरितिक यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस रविवार को स्थानीय समयानुसार प्रातः 6 बजे रोम के फ्यूमिचिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हंगरी और स्लोवाकिया में अपनी 4 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा के लिए रवाना हुए। 2.25 घंटों की हवाई यात्रा के उपरांत आल इतालिया का A320 विमान बुदापेस्ट के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा, जहां हंगरी के कैथोलिक धर्माध्यक्षों, कलीसियाओं की एकतावर्धक समिति और यहूदी समुदायों के प्रतिनिधियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। केंद्रीय यूरोपीय देश हंगरी और स्लोवाकिया में संत पापा फ्रांसिस की यह पहली और इटली से बाहर उनकी 34वीं प्रेरितिक यात्रा है। हंगरी में संत पापा के लगभग 7 घंटों के पड़ाव का प्रमुख उद्देश्य राजधानी बुदापेस्ट में 52वें अंतर्राष्ट्रीय यूखरिस्तीय सम्मेलन के समापन याग का नेतृत्व करना था। वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने कहा है कि हंगरी और स्लोवाकिया में संत पापा फ्रांसिस की तीर्थ यात्रा का लक्ष्य उन सब लोगों को मां मरियम की मध्यस्थता के सुपुर्द करना है जो दुर्बल हैं, कमजोर हैं तथा कोविड महामारी के चलते और अधिक दुर्बल हो गए हैं। बुदापेस्ट स्थित ललित कला संग्रहालय में रविवार 12 सितंबर को संत पापा ने हंगरी के कैथोलिक धर्माध्यक्षों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया।
Sono molto contento di trovarmi qui in mezzo a voi in occasione della conclusione del 52º Congresso Eucaristico Internazionale.
मैं 52वें अंतर्राष्ट्रीय यूखरिस्ते सम्मेलन के समापन पर आप सभी के साथ सहभागी होकर अत्यंत खुश हूं। मैं यूखरिस्ते क्रियाकलाप से प्रेरित अपने कुछ विचारों को साझा करना चाहता हूं। बलि परिवर्तन के रोटी और दाखरस में हम ख्रिस्त को देखते हैं, जो अपने शरीर और रक्त को हमारे लिए अर्पित करते हैं। हंगरी की कली से अपने अटूट विश्वास, अत्याचार और शहीदों के खून के लंबे इतिहास से ख्रिस्त के बलिदान से जुड़ा हुआ है। हमारे कितने भाइयों और बहनों, धर्माध्यक्षों और पुरोहितों ने वेदी में जो चढ़ाया उससे अपने जीवन में अनुभव किया। वे गेहूं के दाने के समान रौंदे गए ताकि दूसरों को ख्रिस्त के प्रेम से पोषित कर सकें। वे अंगूर की तरह निचोड़े गए जिससे कि ख्रिस्त का रक्त नए जीवन का स्रोत बन जाए। वे तोड़े गए किंतु उनका प्रेम बलिदान इतिहास में बोए गए सुसमाचारी बीज का पुनर्जन्म था। संत पापा ने कहा कि शहीदों एवं उनके बलिदानों के इतिहास की याद करते हुए हम भविष्य को भी देख सकते हैं। हम भी उदार बनकर तथा सुसमाचार का साक्ष्य देते हुए शहीदों की चाह को अपना सकते हैं। कलीसिया के जीवन में दो चीजें एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, अतीत की रक्षा और भविष्य को देखना, हमारे धार्मिक मूल एवं अतीत के इतिहास की रक्षा करना, अपनी नजर को अतीत की ओर लगाए नहीं रखना बल्कि सुसमाचार के प्रचार हेतु नए रास्तों की ओर आगे बढ़ना। संत पापा ने हंगरी की धर्म बहनों की याद की जिन्हें धर्म के नाम पर अत्याचार के कारण अपनी मातृभूमि छोड़ना पड़ा था, जिन्होंने अपनी बुलाहट के प्रति निष्ठावान रहकर बुएनस आयर्स में मरिया वार्ड कॉलेज की स्थापना की थी। संत पापा ने निर्वासन के लिए मजबूर सभी लोगों की याद करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। धर्माध्यक्षों से उन्होंने कहा, धर्माध्यक्षों के रूप में आप पहले स्थान पर अपने लोगों को याद दिलाने के लिए बुलाए गए हैं। जैसा कि संत पापा बेनेडिक्ट सोलह ने कहा है, ख्रिस्त परंपरा बॉक्स में रखी गई सामग्री की तरह चीजों या शब्दों का संग्रह नहीं है बल्कि नए जीवन की एक नदी है जो उद्गम यानी ख्रिस्त से निकलकर हम तक बहती है और हमें मानवता के साथ ईश्वर के इतिहास में सहभागी बनाती है। संत पापा ने धर्माध्यक्षों के मिशन के लिए सुझाव के कुछ बिंदु प्रस्तुत किए। संत पापा ने कहा, हम सुसमाचार के संदेशवाहक बने, हम ना भूलें कि कलीसिया के जीवन का केंद्र ख्रिस्त के साथ हमारी मुलाकात है। कई बार हम अपने संस्थाओं और संरचनाओं की सुरक्षा के प्रलोभन में पड़ते हैं, किंतु ख्रिस्त ही निरंतर बहने वाले जल स्रोत हैं, जो सभी की प्यास बुझा सकते हैं। संत पापा ने धर्मदर्शन को भ्रातृत्व के साक्षी एवं आशा के निर्माता बनने का प्रोत्साहन दिया।
Fratelli, Dio vi confermi nella gioia della missione.
हंगरी और स्लोवाकिया में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा को पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए परम धर्म पीठी प्रेस कार्यालय के निर्देशक मतेओ ब्रूनी ने कहा है कि इस यात्रा को चार विभिन्न आयामों सहित एक तीर्थ यात्रा के रूप में देखा जा सकता है। सर्वप्रथम यूखरिस्त के इर्द गिर्द केंद्रित आध्यात्मिक आयाम, विभिन्न कलीसियाओं और ख्रिस्त संप्रदायों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात वाला ख्रिस्तीय एकतावर्धक आयाम, जो संत सिरिल और संत मेथोडियस द्वारा हस्तांतरित सामान्य ख्रिस्तीय विरासत की याद दिलाता है। तृतीय, यहूदी समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात अंतरधार्मिक आयाम को प्रकाशित करता है। और अंततः मिशनरी आयाम, जिसमें संत पापा फ्रांसिस हंगरी और स्लोवाकिया के ख्रिस्तियों द्वारा 20वीं सदी के तानाशाही शासनकाल के दौरान दिए गए विश्वास और शहादत के साक्ष्यों का स्मरण करेंगे। अंतरधार्मिक आयाम की प्रकाशना करते हुए संत पापा ने बुदापेस्ट के ललित कला संग्रहालय में ही अन्य कलीसियाओं एवं ख्रिस्ती संप्रदायों तथा यहूदी धर्म के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें अपना संदेश दिया।
संत पापा फ्रांसिस ने एकता वर्धक परिषद के प्रतिनिधि और यहूदी समुदाय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए परिचय भाषण के लिए धन्यवाद देते हुए उनके साथ मुलाकात करने की खुशी जाहिर की। संत पापा ने कहा कि ये एकता की महान इच्छा का संकेत है। वे हमें उस यात्रा के बारे में बताते हैं जो पिछले समय में आसान नहीं था, परंतु आपने एकता बनाए रखने के लिए साहस और भली इच्छा के साथ एक दूसरे का समर्थन किया है। ईश्वर भी एकता में रहने वाले भाइयों और बहनों को आशीर्वाद देते हैं। संत पापा ने सभी ख्रिस्तियों से कहा कि उनकी पूर्ण सहभागिता की ओर निरंतर यात्रा में उनका समर्थन और आशीर्वाद है। संत पापा आध्यात्मिक केंद्र पानोलहामा के अभय को भी याद किया, जहां वे 3 महीना पहले एक साथ चिंतन प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए थे। एक दूसरे के लिए एक साथ प्रार्थना करने और दान में सहयोग करने के लिए एकत्रित हुए थे, यही पूर्ण एकता का सबसे ठोस मार्ग है। संत पापा ने कहा, विश्वास के पिता अब्राहम में मेरे भाइयों, मैं अतीत में हमें अलग करने वाली दीवारों को तोड़ने के आपके प्रयासों की सराहना करता हूँ। यहूदी और ख्रिस्तीय समान रूप से आप एक दूसरे को अब अजनबी के रूप में नहीं बल्कि मित्र के रूप में, शत्रु के रूप में नहीं बल्कि भाइयों और बहनों के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। यह हृदय परिवर्तन है जो नई शुरुआत को संभव बनाता है। हमारे पूर्वजों के ईश्वर हमें कड़वाहट और उदासीनता के बंजर रेगिस्तान से निकालकर उस संगति की भूमि में लाना चाहते हैं, जिसके लिए हम लंबे समय से तरस रहे हैं। संत पापा ने बुदापेस्ट शहर के दो हिस्सों को जोड़ने वाले चेन ब्रिज के विचार उत्तेजक छवि को इंगित करते हुए कहा कि पुल उन दो हिस्सों को आपस में नहीं जोड़ता बल्कि उन्हें एक साथ रखता है। ऐसा ही हमारे साथ भी होना चाहिए। जब भी हम एक दूसरे को अपनी ओर मिलाने की जबरदस्ती करते हैं तो हम निर्माण करने के बजाय तोड़ देते हैं। हम भाईचारे की शिक्षा को एक साथ बढ़ावा देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें, ताकि बंधुत्व को नष्ट करने वाली घृणा का प्रकोप कभी प्रबल न हो पाए। संत पापा ने विशेष रूप से इस देश के महान कवि मिकलोस रेडनोटी को याद किया। यहूदी होने के कारण यहूदी विरोधियों ने उनके शानदार कैरियर को समाप्त कर दिया, परंतु रेडनोटी ने अपनी मृत्यु तक कविता लिखना जारी रखा। लेखक अपनी आत्मा को जकड़ने वाली जंजीरों से बंधा हुआ एक उच्च स्वतंत्रता और लिखने के साहस की खोज करता है। उन्होंने एक प्रश्न भी रखा जो आज हमारे लिए प्रतिध्वनित होता है। संत पापा ने कहा कि हमारी आवाज उस वचन को प्रतिध्वनित करने में असफल नहीं होना चाहिए, आशा और शांति की प्रतिध्वनि। अंत में संत पापा ने उन्हें धन्यवाद दिया, साथ ही उन्हें अपनी यात्रा में बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया।
हंगरी में संत पापा फ्रांसिस की एक दिवसीय तीर्थ यात्रा का लक्ष्य 52वें अंतर्राष्ट्रीय ख्रिस्तीय सम्मेलन के समापन ख्रिस्तियाग की अध्यक्षता था। इसके लिए विगत सप्ताहों से कैथोलिक धर्मानुयायी ख्रीस्तियागों, प्रार्थना सभाओं, धर्म शिक्षा शिविरों और विचारों के आदान प्रदान सत्रों में भाग लेते रहे थे। आयोजकों के अनुसार रविवार के ख्रीस्तियाग समारोह में लगभग 75,000 श्रद्धालु उपस्थित हुए। केंद्रीय यूरोप स्थित देश हंगरी ऐतिहासिक रूप से एक ख्रिस्तीय देश है। हंगेरियन इतिहास लेखन राष्ट्र की आधारशिला की पहचान सन 1000 ईस्वी में सम्राट स्टीवन प्रथम के बपतिस्मा और उनके राज्याभिषेक से करता है। राजा स्टीवन प्रथम ने कैथोलिक धर्म को राजधर्म घोषित किया था तथा उनके उत्तराधिकारियों को पारंपरिक रूप से प्रेरितिक राजाओं की संज्ञा प्रदान की जाती थी। सदियों के अंतराल में हंगरी की कैथोलिक कलीसिया मजबूत रही तथा एस्टर गॉम के महाधर्माध्यक्ष को हंगरी के राजकुमार प्राइमेट के रूप में असाधारण अस्थायी विशेष अधिकार दिए गए थे। हालांकि वर्तमानकालीन हंगरी का कोई राजधर्म नहीं है, तथापि देश धार्मिक स्वतंत्रता को मूलभूत अधिकार रूप में मान्यता प्रदान करता है। सन 2011 की जनसांख्यिकी के अनुसार हंगरी की कुल आबादी लगभग 1 करोड़ है। 54% ख्रिस्तीय धर्मानुयायियों में कैथोलिक 37.1% हैं। हंगरी में यहूदी, बौद्ध और मुसलमान धर्मों के लोगों का भी अस्तित्व है, किंतु ये आबादी का लगभग 2% मात्र हैं। शेष जनता स्वतः को किसी धर्म का अनुयायी नहीं मानती या फिर स्वतः को नास्तिक घोषित करती है। सन 1938 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने से कुछ ही समय पूर्व बुदापेस्ट में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय यूक्रिस्तीय सम्मेलन संपन्न हुआ था। वैटिकन रेडियो से बातचीत में येसु धर्म समाजी पुरोहित फादर आर्पद ने बताया कि वह एक महान और सफल घटना रही थी जिसे शहर के वयोवृद्ध अभी भी याद करते हैं। उन्होंने कहा, लगभग 80 वर्ष बाद आज एक बार फिर हम प्रसन्न हैं इस सम्मेलन के लिए और विशेष रूप से संत पापा फ्रांसिस की उपस्थिति के लिए। बावनवे यूक्रिस्तीय सम्मेलन का विषय स्तोत्र ग्रंथ के 87वें भजन से लिया गया है, मेरे सारे जल स्रोत तुझ में समाहित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए फादर आर्पद ने कहा कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि संत पापा फ्रांसिस का संदेश यह होगा कि हमारे पास जो जीवन स्रोत है वह है हमारा विश्वास। उन्होंने कहा कि यह संदेश हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि जीवन का महत्व क्या है तथा जीवन में क्या आवश्यक है।
संत पापा फ्रांसिस ने बुदापेस्ट की अपनी प्रेरितिक यात्रा के दौरान नायकों के प्रांगण में 52वें अंतर्राष्ट्रीय यूखरिस्तीय सम्मेलन का समापन करते हुए यूखरिस्तीय बलिदान अर्पित किया। संत पापा ने यीशु के द्वारा अपने शिष्यों को पूछे गए सवाल, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ, पर अपना चिंतन व्यक्त किया। शिष्यों के लिए यह सवाल निर्णायक है जो उन्हें स्वामी के संग उनकी यात्रा को महत्वपूर्ण बनाता है। संत पापा ने कहा, यीशु आज भी हम सबों की ओर व्यक्तिगत रूप से देखते और हम प्रत्येक से यह पूछते हैं, वास्तव में मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। यह सवाल हम सबों के लिए है जो हमसे धर्म शिक्षा के अनुरूप शीघ्रता में एक सटीक उत्तर की मांग नहीं करता, बल्कि हम सबों के व्यक्तिगत जीवन में एक विशेष जवाब की मांग करता है। हमारा उत्तर शिष्यों के रूप में हमें नवीन बनाता है। यह 3 कदमों में होता है जिसे शिष्यों ने लिया, जिसे हम भी ले सकते हैं। यह यीशु के बारे में घोषणा करना, उसके बारे में विचार करना और उनका अनुसरण करना है। संत पापा ने कहा, यूखरिस्त हमें यह बतलाता है कि ईश्वर हमारे लिए कौन है। यह हमारे लिए केवल शब्दों में अभिव्यक्त नहीं होता, बल्कि यह ठोस कार्य के द्वारा हमारे लिए व्यक्त होता है, जहां ईश्वर अपने को रोटी के रूप में हमारे लिए तोड़ते हैं, जो क्रूसित प्रेम स्वरूप दिया जाता है। हमें बचाने के लिए ईश्वर दास बने, वे हमें जीवन देने हेतु मृत्यु को स्वीकार करते हैं। यीशु को मसीह घोषित करने के तुरंत बाद पेत्रुस अपने स्वामी की बातों से भ्रमित हो जाते और उन्हें उस मार्ग से विचलित करने की कोशिश करते हैं। संत पापा ने कहा, पहले की भांति आज भी क्रूस अपने में मोहित या आकर्षित करने वाली कोई चीज नहीं है, यद्यपि यह हमें आंतरिक रूप में चंगाई प्रदान करता है। संत पापा ने कहा, हम यूखरिस्तीय संस्कार की आराधना करते हुए ईश्वर की कमजोरी पर चिंतन करते हैं।
Dedichiamo tempo all'adorazione.
हम परम पावन यूखरिस्तीय संस्कार की आराधना करने हेतु समय निकालें। हम जीवित रोटी यीशु को इस बात के लिए अवसर दें कि वे स्वयं में डूबे रहने की प्रवृत्ति से हमें चंगाई प्रदान करें। वे हमारे हृदय को खोलें, जिससे हम अपने को दूसरों के लिए दे सकें। वे हमें अपनी कठोरता और अपने लिए सोचने की भावना से मुक्त करें। यीशु के पीछे होने का अर्थ क्या है? यह अपने पूर्ण विश्वास में यीशु के संग जीवन में आगे बढ़ना है, इस बात का एहसास करते हुए कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं। यह प्रतिदिन हमारे भाइयों और बहनों से मिलने हेतु बाहर निकलना है। यूखरिस्त हमें मिलन हेतु प्रेरित करता है, जहां हम एक शरीर होने का अनुभव करते और स्वेच्छा से अपने को दूसरों के लिए तोड़ते हैं। हम यूखरिस्त में यीशु से मिलन हेतु तैयार रहें, जो हमें परिवर्तित करते हैं। यीशु के पीछे चलने का अर्थ आगे देखना है, कृपा का स्वागत करना और अपने रोज दिन के जीवन में यीशु के सवाल से चुनौती लेना, जिसे उन्होंने अपने शिष्यों के समक्ष रखा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ।
वैटिकन ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि हंगरी और स्लोवाकिया में संत पापा फ्रांसिस की यात्रा राजकीय यात्रा न होकर केवल एक तीर्थ यात्रा है, जिसके लिए इन राष्ट्रों के कैथोलिक धर्माध्यक्षों द्वारा वे आमंत्रित किए गए हैं। बुदापेस्ट में संत पापा फ्रांसिस शहर के कलात्मक संग्रहालय में हंगरी के राष्ट्रपति यानोस आदेर तथा प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन से औपचारिक मुलाकात कर रहे हैं, तथापि यह कोई राजकीय यात्रा नहीं है। संत पापा फ्रांसिस सदैव हाशिए पर जीवन यापन करने वालों, निर्धनों, आप्रवासियों और शरणार्थियों की पैरवी करते रहे हैं। इसके विपरीत हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन की नीतियां आप्रवासियों और शरणार्थियों को हंगरी में शरण प्रदान करने से इनकार करती रही हैं। ऐसा भी समझा जा रहा था कि विक्टर ऑर्बन की शरणार्थी विरोधी नीतियों की वजह से ही संत पापा हंगरी में केवल कुछ ही देर रुक रहे थे। इस विषय में फादर आरपद ने कहा कि 12 सितंबर को संत पापा फ्रांसिस की बुदापेस्ट भेंट से राजनीति का कोई संबंध नहीं है। आप्रवासियों और शरणार्थियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के साथ साथ संत पापा फ्रांसिस हंगरी जैसी सरकारों द्वारा विकसित राष्ट्रीय लोक लुभावनवाद की आलोचना करते रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने सरकारों से अधिकाधिक आप्रवासियों के स्वागत और एकीकरण का आग्रह किया है। बुदापेस्ट के हीरो स्क्वायर में 52वें अंतर्राष्ट्रीय यूखरिस्तीय सम्मेलन का समापन कर संत पापा फ्रांसिस रविवार अपराह्न बुदापेस्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और इसी के साथ आज का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।